मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं संध्या कुमारी पटना बिहार से, कुलदीप कुमार बांदा उत्तर प्रदेश से, आशीष यादव ललितपुर उत्तर प्रदेश से, वीतराग राजगोंडा वालीवाड़े महाराष्ट्र से, दीपक जगाधरी हरियाणा से, जावेद अख्तर यमुनानगर हरियाणा से, विवेक धीमन यमुनानगर हरियाणा से और गोविंद शर्मा श्रीगंगानगर राजस्थान से। तो संध्या, कुलदीप, आशीष, वीतराग, दीपक, जावेद, विवेक और गोविंद, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम अपने न्यूज पर आते हैं और मुख्य विषय के रूप में आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने जा रहा हूं और वह है कि अभी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट 1989 में आया था उस पर उच्चतम न्यायालय अपनी तरफ से क्या कहता है, उसने क्या कहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक न्यूज आपने रेडियो पर सुनी होगी चंपारण सत्याग्रह को लेकर। इसकी शुरुआत 100 साल पूरे हो गए हैं, इसकी शुरुआत 2017 में हो चुकी है और बस अब खत्म ही होने वाला है इसका शताब्दी समारोह। फिर भी मुझे लगता है कि चंपारण सत्याग्रह अभी भी आपके जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक तरीके से कर लेनी चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स है, अगर हम इसे जोड़ करके देखें तो इस समारोह को, शताब्दी वर्ष को, इसके एक तरह से स्वच्छता का संदेश देने से जोड़ा गया है, क्योंकि गांधी जी आपको मालूम है कि स्वच्छता के बहुत बड़े पुरोधा थे, बहुत बड़े पक्षधर थे। 19 अप्रैल 1917 को यह शुरू हुआ था, 19 अप्रैल 1917। हो सकता है कि तारीख किसी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए, क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको शायद तारीख भी मालूम हो। तो 19 अप्रैल 1917 को और गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया यह प्रथम आंदोलन था, प्रथम आंदोलन। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के आंदोलन कर चुके थे, भारत लौटने के बाद ये उनका प्रथम आंदोलन था। और गांधी जी को जो इनवाइट करने आए थे, या कह लीजिए कि गांधी जी को यहां जो लोग मिले, जो साथ दे रहे थे, उनमें 2-3 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप जानते भी हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और जे बी कृपलानी साहब, आपने उनका नाम भी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान पढ़ा होगा। जो और अन्य नेता थे वो थे एक ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण और रामनवमी प्रसाद, ये कुछ और लीडर्स थे जो गांधी जी के पास आए थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बिहार चलें। चंपारण्य सत्याग्रह, चंपारण्य में ये हुआ था, जो नील की खेती की जाती थी उससे संबंधित ये आंदोलन था, जिसमें जो अंग्रेज थे वो किसानों का शोषण करते थे, उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। गांधी जी वहां गए, उन्होंने सत्याग्रह किया और अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो इस टॉपिक को आप सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली जो छोटी सी खबर है मित्रों, वो है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल अभी शुरू होने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट में। ये आपको मालूम होना चाहिए, 4 साल में एक बार यह खेल होता है ना। इस चूंकि ये 4 साल में एक बार होता है तो ये कुछ समय तक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक अच्छा क्वेश्चन वाला टॉपिक रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर आते रहेंगे। मैं थोड़ी सी बात आपको राष्ट्रमंडल देशों के बारे में बता दूं। बेसिकली यह उन देशों का समूह है, संगठन है, जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश के तहत रहे हैं, मतलब जिन पर ब्रिटेन का शासन रहा है, जैसे कि भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा है। टोटल जो 53 कंट्री हैं ये इसके अभी मेंबर हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा फ्रेंड्स कि अब 2-3 देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत तो नहीं रहे हैं लेकिन इसमें हैं, जिसमें एक है आप कह लीजिए पापुआ न्यू गिनी, नाम आपने सुना होगा पापुआ न्यू गिनी, और दूसरा है इसी तरह का एक राष्ट्र नामीबिया। ये ऐसे देश हैं जो उपनिवेश नहीं रहे हैं लेकिन इसके सदस्य हैं, तो ये दो नाम आप अलग से याद कर लीजिएगा, है ना। अदरवाइज सभी देश लगभग ब्रिटिश उपनिवेश के मेंबर रहे हैं, उपनिवेश में रहे हैं मेंबर तो क्या कहना चाहिए। और इसका जो इसकी जो शुरुआत हुई थी मित्रों 1930 में हुई थी, लेकिन 1930 में इसका नाम राष्ट्रमंडल देश नहीं था, उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, राष्ट्रमंडल खेल नाम नहीं था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। बाद में 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम रखा गया है। कॉमनवेल्थ डे भी मनाया जाता है और यह मार्च के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है, मार्च के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। बहुत बड़ा एरिया, मतलब लगभग दुनिया का जो 1/4 यानी कि 25% लैंड एरिया कॉमनवेल्थ देशों के पास है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 एरिया, जो 1/3 पॉपुलेशन कॉमनवेल्थ देशों में रहती है। और देखिए इसमें जो भी देश हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि इसके मेंबर बने, और इसमें भी उनकी पूरी स्वतंत्रता है कि जब चाहें वो इसकी सदस्यता छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी जानकारी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मैंने दी है। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट बना था उसको लेकर के। मित्रों सोमवार को मैंने इस पर आपसे बात की थी और कुछ पॉइंट्स रखे थे, कल भी मैंने इस पर कुछ बात की, कल भारत बंद था और उसके परसों भारत बंद था, उसकी जो घटनाएं आई, परसों भारत बंद किया गया था, वो सब आपके ध्यान में है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है कि मतलब रिक्वेस्ट की है न्यायालय से कि आप इस पर फिर से विचार करें। न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए जो अपनी बात कही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए अभी तक हमने जो बात सुनी है वो सरकार के सदस्य, राजनीतिक दलों के सदस्य, एसटी एससी ग्रुप के सदस्य, बुद्धिजीवी, राजनीतिक पर्यवेक्षक, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और बट नेचुरल की हमको दोनों की ही बातें सुननी है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना विचार बना सकते हैं, किसी एक का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से दूसरे के पक्षों को सुनने के बाद और उनका जवाब देते हुए फिर आप अपना पक्ष स्थापित कीजिए। तो दोस्तों जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकारी पक्ष के जो हमारे वेणुगोपाल जी थे वो अपनी बात रख रहे थे और बाद में कोर्ट अपनी बात रख रहा था, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी बात रख रहा था मैं उसकी कुछ चर्चा आपके सामने करूंगा और इसमें से ही आप पॉइंट्स निकाल लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कह रहा है। पहली बात तो एक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि हमने एससी एसटी जो एक्ट है इसको कहीं भी नहीं छेड़ा है, उसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, और जो कुछ भी बाहर बताया जा रहा है, किया जा रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उसे उन लोगों ने न तो हमारे निर्णय को पढ़ा है और न सुना है और न उसे समझने की कोशिश की है, वो बिना समझे ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, ये कोर्ट की भाषा नहीं है, ये इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अखबारों में जो चीजें छपी हैं अब वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आपको सीधे उनके शब्द आप जान सके और वो ज्यादा बेहतर होगा, इससे फिर आप अपने पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस हिस्से को दो तीन बार सुनने के बाद फिर एग्जैक्ट पॉइंट निकाल लें, या आपके यहां अखबारों में यदि ये चीजें छपी हों तो वहां से आप ले लें, लेकिन पॉइंट जरूर नोट करें क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इस आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में शायद ही कोई कहने वाला आपको मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ही अपना पक्ष रखना पड़ेगा देश के नागरिकों के सामने। देखिए अब उसके जस्टिस जो हैं आदर्श गोयल वो क्या कहते हैं, हम एससी एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं है पर यह देखना होगा कि बेगुनाह को सजा न मिले। यहां बेगुनाह कौन है, जिसके खिलाफ आरोप FIR दर्ज करा दी गई है लेकिन हो सकता है कि उसने कुछ न किया हो, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही थी कि नहीं, मतलब तुरंत गिरफ्तारी न की जाए, बहुत सिंपल शब्दों में कहें, पर यह देखना होगा कि बेगुनाह को सजा न मिले। सरकार क्यों चाहती है कि जांच के बिना लोग गिरफ्तार किए जाएं? अगर सरकारी कर्मचारी पर कोई आरोप लगाएगा तो वह काम कैसे करेगा? हमने एससी एसटी एक्ट नहीं बदला बल्कि CRPC की व्याख्या की है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हमने व्याख्या की है, हमने एक्ट को बिल्कुल टच नहीं किया है। यह पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा यह कि हमें यह भी देखना है कि बेगुनाह को सजा न मिले, क्योंकि वह भी एक फंडामेंटल राइट्स है जो हम आगे जाकर के देखेंगे। इसके बाद जो जस्टिस है, फिर कुछ और बातचीत होती है और उसमें फिर वो कहते हैं कि इस कानून में आरोपों की पुष्टि मुश्किल है, इसलिए गाइडलाइन जारी की है। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हमने कुछ इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। फिर जो वेणुगोपाल जी हैं वो कहते हैं कि पीड़ितों को मुआवजा भी एफआईआर दर्ज होने पर ही मिलता है, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि एफआईआर दर्ज इस तरीके से न की जाए। उस पर जस्टिस गोयल कहते हैं कि पीड़ित बेहद जरूरतमंद है, तो एफआईआर के बिना भी जिला मजिस्ट्रेट उसे मुआवजा दे सकता है। यानी कि यहां भी उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट को काटा है कि नहीं, जिला मजिस्ट्रेट डीएम जो होता है उसे मुआवजा दे सकता है। इसके बाद फिर सरकार अपना पक्ष रखती है, मैं सरकार ही कहूंगा, कोर्ट ने जो 7 दिन का वक्त रखा है उस दौरान पीड़ित को डराया धमकाया भी जा सकता है, और ये बात कही जा रही थी, राइट। अब इस पर देखिए कोर्ट क्या कहता है, 7 दिन का समय अधिकतम है, यह नहीं कहा गया है कि जांच 7 दिन में ही पूरी करनी है, यह 15 मिनट, आधे घंटे या 1 दिन में भी पूरी हो सकती है, आरोपों की पुष्टि के लिए ही प्रारंभिक जांच का विकल्प रखा गया है, ये कोर्ट कह रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए कि जस्टिस गोयल क्या कहते हैं, सबसे बड़ी खामी यह है कि इस एक्ट में अग्रिम जमानत का विकल्प ही नहीं है, अग्रिम जमानत का विकल्प ही नहीं है, जमानत हर आरोपी का अधिकार है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जमानत हर आरोपी का अधिकार है। अगर किसी को जेल भेजते हैं और बाद में वह निर्दोष साबित होता है तो उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, आपके आंकड़े बताते हैं कि कानून का अक्सर दुरुपयोग होता है, राइट। इसके बाद फिर जो दूसरे जस्टिस थे, 2 जस्टिस की बेंच है, जस्टिस ललित, वो क्या कहते हैं, क्या किसी निर्दोष को पक्ष सुने बिना जेल भेजना उचित है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा होता है तो वह काम कैसे करेगा, कानून सजा की बात करता है, गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। देखिए या फिर से उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि कानून सजा की बात करता है, गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। फिर जस्टिस गोयल क्या कहते हैं, यह अकेला ऐसा कानून है जिसमें किसी को कानूनी उपचार नहीं मिलता। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में कानूनी उपचार की बात कही गई, लास्ट जो आप देखेंगे, यह अकेला ऐसा कानून है जिसमें किसी को कानूनी उपचार नहीं मिलता, केस दर्ज होते ही व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं, झूठे आरोप लगाकर किसी की स्वतंत्रता छीनने का हक किसी को हम नहीं दे सकते। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, झूठे आरोप लगाकर किसी की स्वतंत्रता छीनने का हक किसी को नहीं दे सकते। दोस्तों इसी के साथ ही अमरेंद्र शरण उसी समय थे, एमिकस क्यूरी थे वो, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, यहां से भी आपको पॉइंट मिलेगा, वो सीआरपीसी के बारे में कहते हैं। सीआरपीसी भी कहती है कि गिरफ्तारी से पहले जांच करनी चाहिए, प्रावधान भले ही एक्ट के हों लेकिन प्रक्रिया सीआरपीसी की ही होती है, कोर्ट के गाइडलाइंस से एससी एसटी एक्ट के केस की जांच, ट्रायल और अन्य न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर जस्टिस गोयल आखिरी में कहते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति सीआरपीसी देती है, एससी एसटी कानून नहीं, हमने सिर्फ इस प्रक्रियात्मक कानून की व्याख्या की है, एससी एसटी एक्ट की नहीं। मित्रों ये कोर्ट का पक्ष है, मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं, हो सकता है कि आपके तरफ अखबारों में कुछ और भी नए पॉइंट्स उसमें आए हुए हों तो प्लीज आप उन्हें भी नोट कर लें, और मैं चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है उसे आप नोट करें, और इस टॉपिक पर अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए जहां तक सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का सवाल है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, मैं आज आपको न्यूज़पेपर्स की जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, इसमें एक क्लिपिंग दैनिक भास्कर की है जो किसानों के ऊपर है, जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी ने लिखी है, जो हमारे योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। किसानों की समस्या पर, और बहुत अच्छा आर्टिकल है। प्लीज इससे इस पर भी आप नोट्स बना लीजिएगा। और जब मैं नोट्स बनाने की बात करता हूं ना, तो उसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, बस केवल उन्हीं पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 करके, मतलब 2, 4, 5 पेज रंगने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स नोट कीजिए, समय भी कम लगेगा, आपके दिमाग में भी वो चीजें फिर एक खनकते हुए सिक्के की तरह मौजूद रहेंगी और वही आपके इनफैक्ट काम भी आएंगी। तो मित्रों, और दूसरी क्लिपिंग्स हैं, आप सब देख लेंगे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मुकेश पटेल नालंदा बिहार से, प्रभाकर कुमार, साजिया हक इटावा उत्तर प्रदेश से, दीपक चौहान, रंजीत रंजन पटना बिहार से, फैजल खान, पार्थ सारथी मंडल और अभिनव मिश्र कोलकाता से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।